दानियल की पुस्तक संख्या 30 भय की घड़ी।
रहस्यमय लिखावट के प्रति बेलशज्जर का भय न केवल उसकी मृत्यु और बाइबल की भविष्यवाणी के छठे राज्य के अंत की ओर संकेत करता है, बल्कि भविष्यवाणी के इतिहास में उस समय की ओर भी जब भय पृथ्वी के राजाओं को जकड़ लेता है। उनका भय इस्लाम की पूर्वी पवन से उत्पन्न होता है। उनका भय प्रसव पीड़ा में स्त्री के समान है, इस प्रकार एक क्रमशः बढ़ती हुई पीड़ा की पहचान कराता है जो और तेजी से आती जाती है। ये भय बेलशज्जर के भोज की घड़ी पर शुरू होता है, यद्यपि वो प्रारंभ में 11 सितंबर शौधैनिक को आ पहुंचा था। तब से आगे हवाएं उन 4 स्वर्गदूतों के हाथों से फिसलने लगती हैं जो उन्हें 144,000 की मुहरबंदी के समय थामे हुए हैं। हीजकेल द्वारा पहचाना गया टायरस के लिए विलाप भविष्य सूचक प्रश्न पूछकर टायरस को परिभाषित करता है, कौन सा नगर टायरस के समान है जो समुद्र के बीचों बीच विध्वस्त किए गए के समान है।
तर्शीश के जहाज तेरे बाजार में तेरी प्रशंसा करते थे और तू समुद्रों के बीच भरी पूरी हुई और अत्यंत गौरवशाली बनाई गई थी। तेरे पतवार चलाने वालों ने तुझे बड़े जल में पहुंचा दिया, परंतु पूर्वी पवन ने समुद्रों के मध्य तुझे तोड़ डाला। तेरी संपत्ति और तेरी मंडियां, तेरा माल, तेरे नाविक और तेरे कर्णधार, तेरी दरारें भरने वाले और तेरे माल का कारोबार करने वाले और तेरे सब योद्धा जो तेरे भीतर हैं और तेरे बीच का सारा दल जो तेरे मध्य में है, तेरे विनाश के दिन समुद्रों के मध्य गिर पड़ेंगे। तेरे कर्णधारों की चिल्लाहट की ध्वनि से उपनगर कांप उठेंगे और जो जो पतवार थामते हैं वे सब नाविक और समुद्रों के सब कर्णधार अपने जहाजों से उतर आएंगे। वे भूमि पर खड़े होंगे और तेरे विरुद्ध अपनी वाणी सुनाएंगे और बड़े कड़ुए स्वर से रोएंगे और अपने सिरों पर धूल उड़ाएंगे, राख में लूटेंगे और तेरे कारण अपने सिर बिल्कुल मूंड लेंगे और टाट बांधेंगे, और वे तेरे लिए हृदय की कड़वाहट के साथ और कटु विलाप से रोएंगे, और विलाप करते करते वे तेरे लिए शोक गीत उठाएंगे और तेरे विषय में विलाप करके कहेंगे, समुद्र के बीच नाश हुई टायरस के समान कौन सा नगर है। जब तेरा माल समुद्रों से निकलता था तब तूने बहुत लोगों को तृप्त किया, तूने पृथ्वी के राजाओं को अपने विकुल धन और अपने व्यापार से धनवान चाहती। जब तू जल की गहराइयों में समुद्रों से टूट जाएगी तब तेरा माल और तेरे बीच का सारा दल बीच समुद्र में गिर पड़ेगा। सब द्वीपों के निवासी तुझ पर चकित होंगे, उनके राजा अत्यंत भयभीत होंगे, उनके मुख व्याकुल हो उठेंगे। जातियों के बीच के व्यापारी तुझ पर सीसी करेंगे, तू भय का विषय बन जाएगी और फिर कभी न होगी। यहेशकेल 27:25-33 से।
टायरस वो नगर या राज्य है जिसके लिए पृथ्वी के व्यापारी कटु विलाप करते हैं और फिर पूछते हैं, टायरस के समान कौन सा नगर है। वे ऐसा उस समय में करते हैं जब वो नगर समुद्र में टूटकर नाश हो जाता है। प्रकाशित वाक्य के 18वें अध्याय में टायरस की वेश्या, जो रोम की वेश्या है जिसने पृथ्वी के राजाओं के साथ व्यभिचार किया और जिसे उस महान नगर के रूप में पहचाना गया है जिसका न्याय एक ही घंटे में और एक ही दिन में आता है, वही वो नगर है जो विलाप करते राजाओं और व्यापारियों के मुख से ये भविष्य सूचक प्रश्न उठवाता है।
इस कारण उसके ऊपर एक ही दिन में उसकी विपत्तियां आएंगी, मृत्यु, शोक और अकाल, और वो पूर्णतः आग से भस्म कर दी जाएगी, क्योंकि जो उसका न्याय करता है वो प्रभु परमेश्वर शक्तिशाली है। पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार किया और उसके साथ विलासिता से रहे, जब वे उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए विलाप करेंगे और शोक मनाएंगे, उसकी यातना के भय से दूर खड़े होकर कहते हुए, हाय हाय वो महान नगर बाबुल, वो पराक्रमी नगर, क्योंकि एक ही घड़ी में तेरा न्याय आ पहुंचा। और पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोएंगे और शोक करेंगे, क्योंकि अब कोई उनके माल को नहीं खरीदता, सोने और चांदी और बहुमूल्य रत्नों और मोतियों और महीन मलमल और बैंगनी और रेशम और किरमिजी का माल और थाइन लकड़ी की सारी वस्तुएं और हाथी दांत के सब प्रकार के पात्र और अति बहुमूल्य लकड़ी के और पीतल के और लोहे के और संगमरमर के सब प्रकार के पात्र और दालचीनी और सुगंधियां और मरहम और लोबान और दाख मदिरा और तेल और उत्तम मैदा और गेहूं और पशु और भेड़ें और घोड़े और रथ और दास और मनुष्यों की आत्माएं और वे फल जिनकी तेरी आत्मा लालसा करती थी तुझसे दूर हो गए हैं, और जो कुछ स्वादिष्ट और मनोहर था वो सब तुझसे चला गया है और तू उन्हें फिर कभी नहीं पाएगी। इन वस्तुओं के व्यापारी जो उससे धनी बने थे उसकी यातना के भय से दूर खड़े होकर रोते और मातम करते हुए कहेंगे, हाय हाय, वो महान नगर जो महीन मलमल और बैंगनी और किरमिजी वस्त्र पहने हुए था और सोने तथा बहुमूल्य रत्नों और मोतियों से सजा हुआ था, क्योंकि एक ही घड़ी में इतनी बड़ी दौलत नष्ट हो गई। और हर जहाज का कप्तान और जहाजों में जितने सब दल के लोग हैं और नाविक और जितने समुद्र के द्वारा व्यापार करते हैं सब दूर खड़े रहे, और जब उन्होंने उसके जलने का धुआं देखा तो पुकार उठे, इस महान नगर के समान कौन सा नगर है? और उन्होंने अपने सिरों पर धूल डाली और रोते पीटते हुए पुकार कर कहा, हाय हाय, वो महान नगर जिसकी ऐश्वर्य के कारण समुद्र में जहाज रखने वाले सब लोग धनी बन गए थे, क्योंकि एक ही घड़ी में वो उजाड़ कर दी गई। प्रकाशित वाक्य 18:8-19।
यीशु मसीह के प्रकटीकरण की मुहर खुलने में आधी रात की पुकार का संदेश शामिल है। वो संदेश यहेजकेल अध्याय 37 की दूसरी भविष्यवाणी है, जो उन मृत सूखी हड्डियों को जो 3.5 दिन तक सड़कों पर पड़ी रहीं जीवित कर एक पराक्रमी सेना बना देता है। वही संदेश ये सत्य भी समाहित करता है कि रविवार पालन के प्रवर्तन के कारण संयुक्त राज्य पर कार्यकारी न्याय लाने के लिए प्रभु जिस साधन का उपयोग करता है वो इस्लाम है। वो न्याय महाभूकंप की घड़ी में आता है, जो वही घड़ी है जब बेलशस्सर की दीवार पर वो लिखावट प्रकट हुई थी। उस लिखावट ने वो भय उत्पन्न किया जिसे इस प्रकार दर्शाया गया है कि जब इस्लाम की पूर्वी हवा जो दक्षिण की उपेक्षित निचली दीवार के रास्ते चुपके से बेलशस्सर के राज्य में घुस आई है, पृथ्वी की आर्थिक साधक को ध्वस्त कर देती है, तब वो भय सब राजाओं और व्यापारियों को जकड़ लेता है। वह नगर या राज्य जिसके लिए राजा और व्यापारी विलाप करते हैं और पूछते हैं, इस महान नगर के समान कौन सा नगर है? वही टायर की व्यभिचारिणी का राज्य है, जो तब अपने गीत गा रही होती है और उन्हीं राजाओं के साथ व्यभिचार कर रही होती है। सभी भविष्यद्वक्ता संसार के अंत के बारे में बोलते हैं और वे एक दूसरे से सहमत हैं, अथा यहेजकेल के व्यापारी वही व्यापारी हैं जो प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 में है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 में वे 3 बार हाय हाय कहकर विलाप करते हैं जब महान नगर और पृथ्वी के वित्तीय ढांचे को धराशायी कर दिया जाता है। इस खंड में हाय के रूप में अनुदित यूनानी शब्द वही शब्द है जो प्रकाशित वाक्य अध्याय 8 और पद 13 में 3 बार अनुदित हुआ है, जहां उसे एक भिन्न अंग्रेजी शब्द से अनुवादित किया गया है।
और मैंने देखा और सुना कि एक स्वर्गदूत आकाशमंडल के बीचों बीच उड़ता हुआ बड़े स्वर से कहता था, हाय 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 पृथ्वी के निवासियों पर, शेष 3 स्वर्गदूतों की तुराइयों की ध्वनियों के कारण जो अभी आनी बाकी है। प्रकाशित वाक्य 8:13।
राजा और व्यापारी संसार की अर्थव्यवस्था के विनाश पर हाय हाय शब्दों के साथ विलाप कर रहे हैं, जिसका अर्थ है विपत्ति विपत्ति, और विपत्ति इस्लाम का एक प्रतीक है। जब दीवार पर लिखावट दिखाई देती है तो बेलशज्जर और उसके सरदारों पर जो भय छा जाता है वही भय तब उत्पन्न होता है जब पृथ्वी ग्रह की आर्थिक संरचना इस्लाम के निरंतर हमलों से नष्ट हो जाती है, जिसे परमेश्वर अपने दैवीय साधन के रूप में इस प्रकार प्रयोग पड़ता है कि बाबेल की मदिरा पीने वालों अर्थात रविवार के प्रवर्तन पर अपना कार्यकारी न्याय लागू करे। ये सत्य यशाया अध्याय 30 में टायर की वेश्या के भार का विषय है।
सोर का भार, हाय हाय करो हे तर्शीश के जहाजो, क्योंकि वह उजाड़ दी गई है, न कोई घर रहा न प्रवेश। ये बात उन्हें कित्तीम के देश से प्रकट हुई है। शांत रहो हे द्वीप के निवासियों, तुम जिन्हें समुद्र पार करने वाले सीदोन के व्यापारी समृद्ध करते थे, और बड़े जलों से शिहोर का बीज अर्थात नदी की फसल उसकी आय है और वो जातियों का बाजार है। लज्जित हो हे सीदोन, क्योंकि समुद्र ने हाँ समुद्र के बल ने कहा, मैं न पीड़ा सहती हूँ, न बालक जनती हूँ, न जवानों को पालती पोसती हूँ, न कुमारियों का पालन करती हूँ। जैसे मिस्र के समाचार पर होता है, वैसे ही सोर के समाचार से वे बहुत व्याकुल होंगे। तर्शीश को पार चले जाओ, हाय हाय करो, हे द्वीप के निवासियों, क्या ये तुम्हारा आनंदमय नगर है जिसकी प्राचीनता प्राचीन दिनों से है? उसके अपने ही पांव उसे परदेश में रहने के लिए दूर ले जाएंगे। ये परामर्श सोर के विरुद्ध, उस मुकुट देने वाले नगर के विरुद्ध, जिसके व्यापारी राजकुमार हैं और जिसके सौदागर पृथ्वी के मान्य जन हैं, किसने किया है? सेनाओं के प्रभु ने ये ठहराया है ताकि सब शोभा के गर्व को कलंकित करे और पृथ्वी के सब मान्य जनों को तुच्छ ठहराए। हे तर्शीश की बेटी, अपने देश में नदी के समान निकल जा, अब और बल नहीं रहा। उसने समुद्र पर अपना हाथ फैलाया, उसने राज्यों को हिला दिया। प्रभु ने व्यापारी नगर के विरुद्ध ये आज्ञा दी है कि उसके दृढ़ गढ़ नाश कर दिए जाएं, और उसने कहा, अब तू और आनंद न करेगी, हे तीर्थ कुआरी सीदोन की बेटी, उठ, कित्तीम को पार चली जा, वहां भी तुझे विश्राम न मिलेगा। देख, कल्दियों का देश, ये लोग थे ही नहीं जब तक असीरियों ने जंगल के रहने वालों के लिए इसे स्थापित न किया। उन्होंने उसके गुम्मट खड़े किए, उसके महल उठाए, और उसने उसे उजाड़ कर दिया। हाय हाय करो, हे तर्शीश के जहाजों, क्योंकि तुम्हारा बल उजाड़ दिया गया है। और उस दिन ऐसा होगा कि सोर 70 वर्ष तक एक राजा के दिनों के अनुसार भुला दिया जाएगा। 70 वर्ष के अंत में सोर वेश्या के समान गीत गाएगी, वीणा ले नगर में घूम, हे भुला दी गई वेश्या, मधुर सुर छेड़ बहुत से गीत का, ताकि तेरा स्मरण हो। और 70 वर्ष के अंत के बाद ऐसा होगा कि प्रभु सोर पर ध्यान देगा और वो अपनी मजदूरी की ओर फिर जाएगी और पृथ्वी के मुख पर सब राज्यों के साथ व्यभिचार करेगी, और उसका व्यापार और उसकी मजदूरी प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगी। उसे न तो बटोरा जाएगा और न जमा किया जाएगा, क्योंकि उसका व्यापार उन लोगों के लिए होगा जो प्रभु के सामने रहते हैं, कि वे पर्याप्त खाएं और टिकाऊ वस्त्र पहने। यशाया 23:18।
70 वर्ष जो एक राजा के दिनों के समान है का प्रतिनिधित्व बाबेल का राज्य करता है, क्योंकि राजा ही राज्य होता है। और शाब्दिक बाबेल ने 70 वर्षों तक शासन किया। शाब्दिक बाबेल के वे 70 वर्ष उसी घड़ी समाप्त हुए जब बेलशज्जर के भोज भवन की दीवारों पर वो लिखावट प्रकट हुई। उसी रात वो उस शक्ति के द्वारा मार दिया गया जो दीवार के आर पार अनदेखी होकर आ गई, क्योंकि वो बाबेल की मदिरा पीते हुए दावत मना रहा था। उस समय नबूकदनेस्सर का वाद्यवृंद संगीत बजा रहा था और टायर की वेश्या मधुर धुन गा रही थी, और धर्मत्यागी इसराइल नाचे और झुके। तब सब शामिल लोगों पर भय छा गया, क्योंकि परमेश्वर ने सूर के विरुद्ध परामर्श ठहराया था और निश्चय किया था कि सब शोभा के अभिमान को मलिन करे और पृथ्वी के सब प्रतिष्ठितों को तुच्छ ठहराए। इसलिए परमेश्वर ने उस घड़ी के महान भूकंप से राज्यों को हिला दिया, क्योंकि परमेश्वर ने व्यापारी राज्य के विरुद्ध आज्ञा दी थी कि उसके दृढ़ गढ़ों को नाश करे। बेलशस्सर के लिए भय की उस घड़ी में राजा और व्यापारी दीवार पर लिखे अग्निमय शब्दों का अर्थ समझने की खोज में लग गए। बेलशस्सर की मृत्यु होने ही वाली है, पर उस समय वो अभी जीवित है, इसलिए उसने उन रहस्यमय शब्दों को समझना चाहा और बुद्धिमानों को पुरस्कार देने की पेशकश की यदि वे उस लिखावट का अर्थ बता दे। पर ऐसा हो न सका, क्योंकि बाबुल के बुद्धिमान लोग बाइबल अध्ययन की ऐसी पद्धति अपनाते थे जो सत्य की जाली नकल थी। वे रहस्यमय शब्द मानो एक मोहरबंद पुस्तक के दर्शन के समान थे।
तब राजा के सब बुद्धिमान भीतर आए, पर वे उस लेख को पढ़ न सके और न उसका अर्थ राजा को बता सके। तब राजा बेलशज्जर बहुत घबरा गया, उसका चेहरा बदल गया और उसके प्रभुजन आश्चर्यचकित हो गए। अबरानी राजा और उसके प्रभुजनों की बातों के कारण भोजगृह में आई और रानी ने कहा, हे राजा, सदा जीवित रहो, आपके विचार आपको व्याकुल न करें और आपका मुख न बदले। आपके राज्य में एक पुरुष है जिसमें पवित्र देवताओं का आत्मा है और आपके पिता के दिनों में उसमें ऐसा प्रकाश, समझ और बुद्धि पाई गई थी जो देवताओं की बुद्धि के समान है, जिसे राजा नबूकदनेस्सर आपके पिता, हाँ वही राजा आपके पिता, ने जादूगरों, ज्योतिषियों, कल्दियों और शकुन शोम बताने वालों का प्रधान बनाया था, क्योंकि उसी दानियेल में उत्तम आत्मा, ज्ञान और समझ, स्वप्नों का अर्थ बताने की सामर्थ्य, कठिन वचनों का अर्थ खोलने और संदेहों को सुलझाने की योग्यता पाई गई। उसी को राजा ने बेल्तशज्जर नाम दिया था। अब दानियेल को बुलाया जाए और वो अर्थ बता देगा। तब दानियेल को राजा के सामने लाया गया और राजा ने कहा, क्या तुम वही दानियेल हो जो यहूदा की बंधुवाई के पुत्रों में से हो, जिसे मेरे पिता राजा यहूदिया से यहाँ ले आए थे? मैंने तुम्हारे विषय में ये भी सुना है कि तुम में देवताओं का आत्मा है और तुम में प्रकाश, समझ और उत्तम बुद्धि पाई जाती है। और अब बुद्धिमान और ज्योतिषी मेरे सामने लाए गए हैं कि वे इस लेख को पढ़ें और उसका अर्थ मुझे बताएं, पर वे इस बात का अर्थ बता नहीं सके। और मैंने तुम्हारे विषय में सुना है कि तुम अर्थ स्पष्ट कर सकते हो और संदेहों को सुलझा सकते हो। अब यदि तुम इस लेख को पढ़ सको और उसका अर्थ मुझे बता दो, तो तुम्हें किरमिजी वस्त्र पहनाए जाएंगे, तुम्हारे गले में सोने की जंजीर डाली जाएगी और तुम राज्य में तीसरे शासक बनोगे। दानियेल 5:8-16।
महल में जो रानी थी वो बेलशज्जर की पत्नी नहीं बल्कि उसके दादा की रानी थी, और उसे मालूम था कि दीवार पर लिखे हुए शब्दों को कौन पढ़ सकता था। राज्य में एक कलीसिया थी, क्योंकि भविष्य सूचक अर्थ में स्त्री एक कलीसिया होती है, जो जानती थी कि परमेश्वर के रहस्यों को कौन समझ सकता था।
महल में एक स्त्री थी जो उन सब से अधिक बुद्धिमान थी, बेलशस्सर के दादा की रानी। इस संकट में उसने राजा से ऐसे शब्दों में बात की कि अंधकार में प्रकाश की एक किरण फैल गई। हे राजा, सदा जीवित रहो, उसने कहा, तेरे विचार तुझे व्याकुल न करें और तेरा मुखमंडल न बदले। तेरे राज्य में एक पुरुष है जिसमें पवित्र देवताओं की आत्मा है, और तेरे पिता के दिनों में उसमें ज्योति, समझ और बुद्धि देवताओं की बुद्धि के समान पाई जाती थी, जिसे राजा नबूकदनेस्सर तेरे पिता, हाँ राजा मैं कहता हूँ तेरे पिता, ने जादूगरों, ज्योतिषियों, कसदियों और शकुनविदों का प्रधान ठहराया था। अब दानियेल को बुलाया जाए और वो व्याख्या बता देगा। तब दानियेल को राजा के सामने लाया गया। अपने आप को संभालने और अपना अधिकार दिखाने का प्रयत्न करते हुए बेलशज्जर ने कहा, क्या तू वही दानियेल है जो यहूदा की बंधुआई के पुत्रों में से है, जिसे मेरे पिता राजा यहूदिया से ले आए थे? मैंने तेरे विषय में ये भी सुनना है कि देवताओं की आत्मा तुझ में है और कि प्रकाश, समझ और उत्कृष्ट बुद्धि तुझ में पाई जाती है। अब यदि तू उस लेख को पढ़ सकता है और उसका अर्थ मुझे बता दे, तो तू अर्गवानी वस्त्र पहनेगा और तेरे गले में सोने की जंजीर डाली जाएगी और तू राज्य में तीसरा शासक होगा। दानियेल राजा के स्वरूप से न विस्मित हुआ, न ही उसकी बातों से भ्रमित या भयभीत हुआ। तेरी भेंटे तेरे ही पास रहें, उसने उत्तर दिया, और अपने इनाम किसी और को दे दे, तो भी मैं राजा को वो लेख पढ़कर सुनाऊंगा और उसका अर्थ बता दूंगा। हे राजा, परमप्रधान परमेश्वर ने तेरे पिता नबूकदनेस्सर ने को राज्य और महिमा और वैभव और आदर दिया, परंतु जब उसका मन ऊंचा हो गया और अभिमान से उसका चित्त कठोर हो गया, तब उसे उसके राज सिंहासन से उतार दिया गया और उसकी महिमा उससे छीन ली गई। और हे बेलशज्जर, तू जो उसका पुत्र है, तूने ये सब जानते हुए भी अपना मन नम्र नहीं किया, पर तू स्वर्ग के परमेश्वर के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ है, और उसके घर के पात्र तेरे सामने लाए गए, और तू और तेरे सरदार, तेरी पत्नियां और तेरी उपपत्नियां उनमें पीते रहे, और तूने चांदी और सोने, पीतल, लोहे, लकड़ी और पत्थर के देवताओं की स्तुति की है, जो न देखते हैं, न सुनते हैं, न जानते हैं, पर जिस परमेश्वर के हाथ में तेरी श्वास है और जिसके वश में तेरे सब मार्ग हैं, उसकी तूने महिमा नहीं की। ये वो लेख है जो लिखा गया है, मेने मेने टेकिल उफारसन, और इस बात का अर्थ ये है, मेने परमेश्वर ने तेरे राज्य की गिनती कर दी है और उसे समाप्त कर दिया है, टेकिल तुझे तराजू पर तौला गया है और तू कम पाया गया है, पेरे सर तेरा राज्य बांटा गया है और मादियों और फारसियों को दे दिया गया है। दानियल अपने कर्तव्य से विचलित नहीं हुआ। उसने राजा के पाप को उसके सामने रखा, उसे वे शिक्षाएं दिखाईं जो वो सीख सकता था पर नहीं सीखी। बेलशज्जर ने उन घटनाओं पर ध्यान नहीं दिया जो उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थीं। इसने अपने दादा के इतिहास को सही ढंग से नहीं पढ़ा था। सत्य को जानने की जिम्मेदारी उस पर डाली गई थी, पर जिस व्यावहारिक शिक्षा को वो सीखकर उस पर अमल कर सकता था, उसे उसने मन से नहीं अपनाया और उसके आचरण का निश्चित परिणाम सामने आया। ये कल्दियों के राजा द्वारा आयोजित शेखी भरा अंतिम भोज था, क्योंकि जो मनुष्य की हठधर्मिता को लंबे समय तक सहता है, उसने अपरिवर्तनीय दंडादेश सुना दिया था। बेलशस्सर ने उस एक का, जिसने उसे राजा बनाकर ऊंचा उठाया था, बड़ा अपमान किया था और उसके अनुग्रह का समय उससे ले लिया गया। जब राजा और उसके सरदार अपनी रंगरेलियों के चरम पर थे, तब फारसियों ने यूफ्रात नदी को उसकी धारा से मोड़ दिया और बिना पहरे वाली उस नगरी में कूच कर गए। जब बेलशस्सर और उसके प्रधान यहोवा की पवित्र पात्रों से पी रहे थे और अपने चांदी और सोने के देवताओं की स्तुति कर रहे थे, तब कुरूश और उसके सैनिक राजमहल की दीवारों के नीचे खड़े थे। उसी रात, विवरण कहता है, कल्दियों का राजा बेलशस्सर मारा गया और मादी दारा ने राज्य ले लिया। बाइबल एको, मई 3, 1892।
संकट के बीच रानी एक कलीसिया ने ये पहचाना कि एक ऐसा स्रोत है जो फ्यूचर फॉर अमेरिका की पहचान कर सकता है। दानियल एक बार फिर अपने भाग में खड़ा होता है ताकि दिनों के अंत में अपना उद्देश्य पूरा करे। धधकती भट्टी में शद्रक, मेशक और अबेदनगो द्वारा दी गई पताका की गवाही अब दानियल देता है, क्योंकि वो सत्य की रेखा में ये जोड़ता है कि रविवार कानून के संकट की घड़ी में उस पताका का प्रतिनिधित्व करने वालों को सत्य की गवाही देने के लिए राज्य के अधिकारियों के सामने लाया जाएगा।
वे तुम्हें परिषदों के हाथ सौंपेंगे, हाँ, और तुम्हें हाकिमों और राजाओं के सामने मेरे कारण लाया जाएगा, उनके और अन्य जातियों के लिए गवाही के रूप में। मत्ती 10:17-18। आरवी, उत्पीड़न से प्रकाश फैलेगा। मसीह के सेवकों को संसार के महान पुरुषों के सामने लाया जाएगा, जो यदि ये न होता तो संभवतः कभी सुसमाचार न सुनते। इन लोगों के सामने सत्य का गलत चित्रण किया गया है। उन्होंने मसीह के चेलों के विश्वास के विषय में झूठे आरोप सुने हैं। अक्सर इसके वास्तविक स्वरूप को जानने का उनका एकमात्र साधन उन लोगों की गवाही होती है, जिन्हें अपने विश्वास के कारण न्याय के कटघरे में लाया जाता है। जिरह के दौरान उनसे उत्तर मांगे जाते हैं और उनके न्यायाधीश दी गई गवाही सुनने के लिए बाध्य होते हैं। आपात स्थिति का सामना करने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह उसके सेवकों पर प्रदान किया जाएगा। तुम्हें उसी घड़ी दिया जाएगा कि क्या बोलना है, यीशु कहते हैं, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। जब परमेश्वर का आत्मा अपने सेवकों के मनों को आलोकित करता है, तब सत्य अपनी दिव्य शक्ति और बहुमूल्यता में प्रस्तुत किया जाएगा। जो सत्य को अस्वीकार करते हैं, वे चेलों पर दोष लगाने और उन्हें सताने के लिए खड़े होंगे, परंतु हानि और कष्ट में, मृत्यु तक भी, प्रभु की संतानों को अपने दिव्य आदर्श की नम्रता प्रकट करनी है। इस प्रकार शैतान के प्रतिनिधियों और मसीह के प्रतिनिधियों के बीच का अंतर स्पष्ट होगा। उद्धारकर्ता शासकों और प्रजा के सामने ऊंचा उठाया जाएगा। युगों की अभिलाषा 655।
जैसे उन तीनों वीरों के साथ था, वैसे ही दानियल को किसी उपहार में रुचि नहीं थी और उसे ये अभ्यास करने की भी आवश्यकता नहीं थी कि वो क्या कहने वाला है। उसने बहुत सरलता से दीवार पर दर्शाए गए 7 समय की व्याख्या प्रस्तुत कर दी। हम अगले लेख में बेलशज्जर की कहानी जारी रखेंगे।
जो लोग परमेश्वर के कार्य के प्रति निष्ठावान नहीं हैं, उनमें सिद्धांतों की कमी होती है। उनकी प्रेरणाएं ऐसी प्रकृति की नहीं होती कि वे हर परिस्थिति में सही को चुने। परमेश्वर के सेवकों को हर समय ये अनुभव होना चाहिए कि वे अपने नियोक्ता की निगाह में हैं। जिसने बेलशज्जर के अपवित्र भोज पर नजर रखी, वही हमारी सभी संस्थाओं में, व्यापारी के लेखा कक्ष में, निजी कार्यशाला में उपस्थित है, और वो रक्तहीन हाथ आपकी उपेक्षा को उतनी ही निश्चितता से लिख रहा है जितनी निश्चितता से उसने उस ईश निंदक राजा का भयानक दंडादेश लिखा था। बेलशज्जर का दंडादेश अग्नि के अक्षरों में लिखा गया था, ती तराजू में तोला गया और तुझ में कमी पाई गई, और यदि आप अपने परमेश्वर प्रदत्त दायित्वों को पूरा करने में असफल होते हैं तो आपका दंडादेश भी वही होगा। युवाओं के लिए संदेश 229।